बहवो ज्ञान तपसा
बहवो ज्ञान तपसा
पूता मद भाव भागता पूता मद भाव भागता। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मेरे ही परायण तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं, ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। साधक ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, बाहर मिलता सो मिले अंतर सब सो एक। इस श्लोक को गहराई से समझेंगे कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हों और जो मेरे ही परायण हैं तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं, ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे आश्रित, उसका मतलब ये नहीं कि जो मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा है वहां जाकर मंडारना है। मेरे आश्रित श्री कृष्ण का माम जो है वही तुम्हारी गहराई में तुम्हारा माम है। अर्थात कृष्ण कह रहे मेरे आश्रित मतलब तुम अपने आप में, जहां कृष्ण मैं कह रहे हैं वहां जिसने अपना आश्रय ठाना है, ऐसे जो ज्ञान योग से ज्ञान योग रूपी तप से पवित्र हुए, भावना से नहीं, मान्यता से नहीं। यस्य ज्ञानमयम तपः, जो ज्ञान संयुक्त तप है, ज्ञान तप से बढ़कर दुनिया में और कोई तप नहीं। योग की दृष्टि से, एकाग्रता की दृष्टि से एकाग्रता बड़ा तप है, लेकिन जहां पतंजलि का योग दर्शन समाप्त होता है, जहां क्रिया योग समाप्त होता है, वहां से ज्ञान योग शुरू होता है। कल बताया था कि 6 वर्ष क्रिया योग की अलग अलग उपासनाएं करते करते आखिर गौतम थके, और जब थके थोड़ा विवेक जगा तो गौतम अकेले गौतम न हुए, गौतम बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। तो पतंजलि का या और योग की यात्रा करते करते जब कषाय परिपक्व हो जाते हैं, अथवा तो ज्ञान की किरण मिल जाती है, तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके साथ का संबंध विच्छेद करके जीव अपने शिव स्वभाव को पा लेता है। यही कृष्ण भाव को पाना है। ये सूक्ष्मता से बात समझिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आश्रित रहने वाले हैं, ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हुए। मेरे भाव को प्राप्त हुए मतलब जिस तत्व में, जिस स्व में मैं जो का त्यों हूं, उसी में वे प्राप्त हुए हैं। मुझसे तनिक कम नहीं हुए। कोई लहर अगर ज्ञान योग में आ गई तो वो सागर कहता कि मेरे भाव को प्राप्त हुई। कैसे मेरे भाव को प्राप्त हुई कि वो सागर हो गई, वो जल राशि हो गई। तो जल राशि पहले थी, इसी बात को गीताकार ने आगे कहा, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। जो तुम्हारा वास्तविक, जिसको तुम जीव मैं मानते हो, वो भी चेतन है, जड़ मैं नहीं बोल सकता है। ये मंडप मैं हूं ऐसा नहीं इसे पता, ये कबाट मैं हूं ऐसा नहीं बोलेगा, पहाड़ मैं हूं ऐसा नहीं बोलेगा। जब जब मैं हूं बोलेगा तो चैतन्य की सत्ता से ही तुम्हारा मुंह बोलेगा, जीभ हिलेगी। हिलचाल तो और जड़ पदार्थों में भी होती है, लेकिन उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, किन्तु तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान है। फिर वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान तुम्हें नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो साधन थोपे गए हैं और जो संस्कार थोपे गए हैं, उन संस्कार और साधनों और वासनाओं का गुड़ गोबर करके तुम अपने को कुछ मान लेते हो। है कुछ काले सफेद बाल, है कुछ हार्ड मास, है कुछ रक्त पुंज, है कुछ मन की चंचलता और एकाग्रता, है बुद्धि का निर्णय अनिर्णय, इन सब को सत्ता तुम देते हो और मिला जुला के उसको मैं मानते हो। लेकिन जो ज्ञान योग तप से पवित्र हुआ है वो ऐसा जो साधक है वो भगवान कहते मेरे भाव को प्राप्त हुआ है। तो भगवत भाव को, भगवत अनुभव को हम कैसे प्राप्त हो, कौन प्राप्त होता है कि वितराग भय क्रोध, जिसका राग व्यतीत हो गया, भय व्यतीत हो गया, क्रोध व्यतीत हो गया। बालक का राग सुषुप्त है, उसलिए सुंदर सुहावना लगता है, निश्चिंत रहता है और उसको देखकर माँ बाप की थकान भी मिटती है क्षण भर के लिए। बच्चे का राग सुषुप्त राग है, इसलिए उसकी सहज बोल चाल, हिल चाल, तोतली भाषा भी माँ बाप की कुछ देर तक थकान मिटा देती है। लेकिन जिन मुनीश्वरों का ज्ञान योग से भय राग क्रोध चला गया है, उनकी बोलचाल साधकों की जन्म मरण की थकान मिटाने का सामर्थ्य रखती है। वितराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मेरे ही परायण तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं, जिनके राग भय और क्रोध, चलो एक एक चरण पर आए, वित राग भय क्रोध, जिनका राग भय और क्रोध व्यतीत हो गया। तो राग भय और क्रोध व्यतीत हो गया है तो राग भय क्रोध होता कैसे है? राग होता है मिटने वाली वस्तुओं में आसक्ति करने से राग होता है, मिटने वाले नश्वर भोग पदार्थों को पाने की इच्छा से राग होता है। अच्छा, उस वस्तुओं में, उस परिस्थितियों में अगर कोई विघ्न डालता है तो अपने से छोटा आदमी विघ्न डालता है तो उस पर क्रोध आता है, और अपने से कोई बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है। अथवा तो ये जो धन धान्य मान प्रतिष्ठा वैभव आदि मिला है वो हमसे छूटे न, कहीं छूट न जाए, इस प्रकार का अंदर भय बना रहता है। जो कुर्सी मिली है, जो वाहवाही मिली है, जो घर बार मिला है, अथवा जो ये क्षण भंगुर देह मिला है वो कहीं चला न जाए, इसका भय बना रहता है। तो राग भय और क्रोध का उद्गम स्थान है नश्वर पदार्थों में, नश्वर संबंधों में, नश्वर देह इंद्रियों में, शाश्वत की नाई प्रीति करने की गलती। जय जय, दुनिया के सारे दुख का उद्गम स्थान यही है कि परिवर्तनशील परिस्थितियों को थामने की गलती करना, और इन पदार्थों को आज तक कोई थाम नहीं सका, चाहे सेठ हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे साधु हो, चाहे पीर ओलिया फकीर हो, चाहे अवतार हो, लेकिन ऐसी घड़ी आती है कि सर्वस्व छोड़ने की फर्ज सबको पड़ी। ऐसा दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मिले हुए देह को, मिले हुए धन को, मिली हुई सत्ता को, मिले हुए मान को, मिली हुई परिस्थितियों को कोई संभाल कर ले गया हो, ऐसा आज तक दुनिया में कोई आया नहीं, आएगा नहीं और आ सकता भी नहीं है, फिर भी सब धमाधम किए जा रहे हैं। फिर धमाधम क्यों किए जा रहे हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उनका ज्ञान ढक गया है, इसलिए बिचारे वे बिचारे जंतु की नाही विमोहित होते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जंतवा। वितराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, तो भय राग और क्रोध चला गया। त्यागी ने देखा कि सब छूट जाएगा, चाहे करोड़ हो तो भी छूट जाएगा, त्याग आ गया, सब छोड़ गए, साधु हो गए, नश्वर चीजें नाश हो जाएगी उसके पहले छोड़ के साधु हो गए, लेकिन मनमाया नहीं हुए तो मुझ में अंदर में नहीं आए तो फिर याद रहेगा कि मैंने 1 करोड़ छोड़ा, मैंने 2 करोड़ छोड़ा, मैंने पुत्र छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने नमक छोड़ा, मैंने शाक छोड़ा, मैंने अन्न छोड़ा, मैंने जल छोड़ा, मैंने फल छोड़ा। लेकिन मनमाया न हुआ तो तू अपनी मैं को ठीक रूप से नहीं जान पाएगा, और ठीक रूप से नहीं जानेगा तो त्याग के बाद भी कहीं कोई गलती कर लेगा, त्यागी होने की भी गलती कर लेगा। इसलिए एक तो नश्वर चीजों की आस्था चित्त से विवेक बुद्धि से हटाई जाए, और दूसरा शाश्वत स्वरूप में प्रीति की जाए। बस दो ही काम करने हैं। तुमने कितने सारे काम किए बचपन से, देखो तुम कितना पढ़े, कितनों की खुशामद की, तुमने फेरे फेरे, सासू के पैर छुए, ससुरों के पैर छुए, मास्टरों को रिझाया। अब कृष्ण को रिझाने के लिए, गुरु को रिझाने के लिए दो काम कर लो, दुनिया तुम्हें रिझाती फिरेगी, तुम ऐसे हो जाओगे, फिर दुनिया तुम्हारी मनोती मानकर अपना काम करने लग जाएगी, तुम ऐसे महान हो जाओगे। केवल दो ही काम करने, क्या? एक तो नश्वर वस्तु को नश्वर मान लेना है, जयराम जी की, और शाश्वत चीज को मैं रूप में जान लेना है। बस कोई ज्यादा मेहनत थोड़े है। नारायण बोलो, बोलो नारायण, नारायण नारायण नारायण। शास्त्र सब प्रसन्न हो जाएंगे, ऋषि मुनि तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, यक्ष गंधर्व किन्नरों को धिक्कार है जो तुम्हारी चाकरी में न लग जाए, और उन देवताओं को भी कंपटीशन करना पड़ेगा तुम्हारे काम करने के लिए, तुम इतने महान हो जाओगे। केवल ये दो बातें करो। भगवान जहां ठहरे हैं, भगवान चाहते तुम वहां ठहर जाओ। भगवान की निगाह वो तुम अपनी निगाह बना लो, ब्रह्मवेता का अनुभव तुम अपना बना लो, और कोई तुम्हारे से भगवान या संत कुछ छीनना नहीं चाहते। अगर छीनना चाहते हैं तो नश्वर पदार्थों में जो बेवकूफी से आस्था हो रही है वो बेवकूफी छीनना चाहते हैं, और शाश्वत आत्मा भगवान पराया लग रहा है, ये परायापन छीनते हैं, और तो बेचारे कुछ छीनना भी तो नहीं चाहते। और कुछ भगवान या संत या शास्त्र तुमसे छीनते हो तो मुझे बताओ, मैं चलूंगा साथ में। और तो नहीं छीनना चाहते सतशास्त्र हम लोगों से, अज्ञान छीनना चाहते हैं, और ईश्वर के विषय में परायापन छीनना चाहते हैं। ईश्वर को पराया मानकर, दूर मानकर अगर भजन करेंगे ना तो बरकत नहीं आएगी। तुझ में इतनी ताकत है, तू जूते को अपना मानता है, फाउंटेन पेन को अपना मानता है, तो क्यों भगवान को पराया मानता है और फिर दुखी हो रहा है? अरे यार, मनुष्य जन्म पाकर भी तू दुखी और परेशान रहा तो बड़े शर्म की बात है। दुख और परेशानी तो वे उठाए जिनके माई बाप मर गए, माई बाप तेरा आत्मा तो तू ही है, फिर क्यों दुखी और चिंतित होता है? तो यहां आज का श्लोक हमें सीख दे रहा है, भगवद गीता के 4th अध्याय का 10वां श्लोक है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं, जयराम जी की। वितराग भय क्रोध, राग चला जाए। जब जब दुख हुआ है आप गहराई से खोजेंगे दुख किस निमित्त होता है। ईमानदारी से जरा गोता मार के देखिए, जब जब दुख होता है, भय होता है या क्रोध आता है तो किस निमित्त आता है? थोड़ा सा रुक कर देखिए, जब भी भय आए, क्रोध आए, ये दुख आए तो देखना कि ये क्यों हुआ। आता है और आप उससे सहमत हो जाते हैं, हस्ताक्षर करके चालू गाड़ी में कूदका मार लेते हैं, और आपकी पुरानी आदत है चालू गाड़ी में बैठने की, लेकिन अभी थामो, पहले पार्टियां देखो कि गाड़ी कहां जा रही है, कम से कम अपना गाड़ी का नंबर तो देखो। अपने घर न जाने वाली गाड़ी भले खाली हो, कोच हो, एसी लगी हो, लेकिन तुम्हारे काम की नहीं। और तुम्हारे गांव जाने वाली गाड़ी में भले सीटें टूटी फूटी हो, फिर भी कूद के उसी में बैठना, पराई गाड़ी में मत बैठना। पोताना गांव में जती एसटी भले लग्जरी टाइप नहीं ना होए, सीटों भले एयर कंडीशन नी व्यवस्था वाली ना होए, छताए पोताना गाम जती गाड़ी ज तमारा उपयोगनी छे, पारका गाम ले जाए ते गाड़ी तमारा माटे मफतमा बेहाड़े तो नकामी नकामी ने नकामी। એ વાતમાં કોઈને સંદેહ હોય તો પૂછી લ્યો. અબ તુમ્હારા ગાંવ ક્યા? તુમ્હારા ગાંવ વહી હૈ જહાં જાને કે બાદ તુમ્હારા અધપતન ન હો, જહાં જાને કે બાદ તુમ્હારી થકાન મિટે. અપને ઘર જાઓગે તો ક્યા હોગા? બજાર ગયે, ઇધર ગયે, ઉધર ગયે, યાત્રા ગયે. યાત્રા ગયે તો ઉત્સાહ છે, લેકિન ભાગે ભી ઉતના તેજી છે. ઘરે જઈ નિરાશ થાશ. પોતાનું ઘર એ પૃથ્વીનો છેડો. તમે ગમે એવી દક્ષિણ ભારતની યાત્રા કરો, ઉત્તર ભારતની યાત્રા કરો, નેપાળની યાત્રા કરો, પણ છેવટે થાક ઉતારવાનો વિચાર આવશે. દોડ્યા દોડ્યા ઘરે આવશો. બોલો, સિદ્ધપુર વાળો સિદ્ધપુર પહોંચશે ને મુંબઈ વાળો મુંબઈ ઘર સમજશે ને સુરત વાળો સુરતમાં આવે. મારું ઘર એ પૃથ્વીનો છેડો. તો યે ઘર વાસ્તવ મેં તુમ્હારા નહીં, યે ઘર તુમ્હારે શરીર કા ઘર હૈ. શરીર કી થકાન મિટાના હૈ તો ચાર દિવારી મેં આવો, ઓર તુમ્હારી થકાન મિટાના હૈ તો આત્મજ્ઞાન કે ઘર મેં આવો. તુમ્હારા બેડા પાર જાય. ઉસકે સિવાય ઓર કોઈ ઉપાય આજ તક સફલ ગયા નહીં. ઉસકે સિવાય કોઈ ઉપાય આજ તક સફલ પૂર્ણ રૂપ સે સફલ ગયા નહીં. યોગ વશિષ્ઠ કા પ્રસંગ આતા હૈ કે બ્રહ્માજી ને સૃષ્ટિ રચી ઓર જીવો કો રાગ ભય ક્રોધ ઈચ્છા દ્વેષ આદિ સે દુખી દેખા. જૈસે પિતા પરિવાર પુત્રો કો કા દુખ દેખ કર કુછ સોચ વિચાર કરતા હૈ ઓર ઉસકે લિયે ઉપાય કરતા હૈ. એસે બ્રહ્માજી ને દેખા કે જીવ બિચારે દુખી હૈ, ચલો યજ્ઞ હોમ હવન કી પદ્ધતિ કા પ્રચાર પ્રસાર હો તાકિ જીવ સ્વધા સ્વાહા કરકે પ્રાણવાયુ શુદ્ધ કરકે અપને મન કો થોડા એકાગ્ર કરકે યહાં ભી થોડા સુખી રહે ઓર પરલોક મેં આયે સ્વર્ગ પાય. લેકિન બ્રહ્માજી ને પાયા કે ઇતના કરને કે બાદ ભી વ્યક્તિ કી એકાગ્રતા હોતી ઓર સંસાર કી ચીજો કો પકડતા હૈ, મરતે દમ તક છોડતા નહીં ઓર સ્વર્ગ મેં આતા હૈ તો સ્વર્ગ કો પકડતા હૈ. ન સ્વર્ગ મેં સદા રહે સકતા હૈ, ન યહાં સદા રહે સકતા હૈ, ન નરક મેં સદા રહે સકતા હૈ. બહાર કી ચીજો સે આદમી સદા બંધ કે રહે હી નહીં સકતા. અરે મુજે સૃષ્ટિકર્તા કો ભી કલ્પ કે અંત મે રવાના હો જાના પડતા હૈ તો મેરે ઉત્પન્ન કિયે હુએ જીવ સદા કૈસે રહે સકતે. એકદમ સીધી બાત હૈ. તુમ રાત્રિ કો સ્વપ્ના દેખતે હો ઓર સ્વપ્ના મે તુમને દેખા એક સુંદર સુહાવના કોમ્પ્લેક્સ હૈ ઓર ઉસમે કઈ દુકાને હૈ. હા મહારાજ, એક હલવાઈ કી ભી દુકાન હૈ, એક ફોટોગ્રાફર કી, તમામ દુકાને ઓર દુકાન મે ગ્રાહક ભી હૈ ઓર ગ્રાહક ફોટો લેવા રહે હૈ અપના. અમે હલવાઈ કી દુકાન પર મીઠાઈ લે રહે હૈ. અબ દેખો કે ઉનકા મીઠાઈ લેના યા ફોટો લેવાના એક તબ તક જિંદા હૈ જબ તક તુમ સ્વપ્ને મે હો. તુમ્હારે સ્વપ્ને પુરુષ તબ તક જીવિત હૈ જબ તક તુમ્હારી સ્વપ્ને કી અવસ્થા હૈ. જબ તુમ શાશ્વત નહીં તો તુમ્હારા સ્વપ્ના કૈસે શાશ્વત, ઓર તુમ્હારા સ્વપ્ના શાશ્વત નહીં તો વો મીઠાઈ કી દુકાન વાલા હલવાઈ કબ તક શાશ્વત રહેગા, ઓર મીઠાઈ કી ચાટ પર મુંહ મેં પાણી લાને વાલા કબ તક રહેગા. સમજ રહે? ગુજરાતી મેં કહે દઉં, તમે સ્વપ્નું જોયું અને સ્વપ્નામાં આખી બજાર દુકાન કોમ્પ્લેક્સ બીજું ત્રીજું આમ તેમ બધું જોયું અને કોઈ મીઠાઈ ની દુકાને કે મોઢામાં પાણી લાવ્યો છે, કોઈ ભૂસું ચાટવા માટે મથ્યો છે, કોઈ પિક્ચર જોવા માટે ધમ્યો છે, કોઈને આમ છે, કોઈને લેવું છે, કોઈને દેવું છે, કોઈને કઈ કરવું છે, કોઈને કઈ જવું છે, એ બધું સ્વપ્નામાં તમને દેખાય, દેખાય કે ન દેખાય. અને એ લોકોના કોઈ જમાઈ હોય, કોઈ વેવાઈ હોય, કોઈ શાળા હોય, કોઈ બનેવી હોય, કોઈના લગ્ન હોય, કોઈના કોઈ પ્રસંગો હોય, કોઈને બેસણા હોય, એ બધું હોય કે ના હોય સ્વપ્નામાં? હોય. અને એ બધું ઈ વખતે સાચું લાગતું હોય કે ના લાગતું હોય? હોય. પણ તમારું સ્વપ્નું સાચું નથી તો એ લોકોનું બેસણું ક્યાં સુધી સાચું? અને બેસણું સાચું નહીં તો ઉઠણું ક્યાં સુધી સાચું? જ્યાં સુધી તમારું સ્વપ્નું છે એવી રીતે આ તમારા બેસણા ઉઠણા આના જાના એ બ્રહ્માજી કા સ્વપ્ન હૈ તબ તક. ઓર ઉસમે ભી જૈસે ચાલુ સ્વપ્ન મેં કઈ લોગ પેદા હો જાતે હૈ, કઈ મર જાતે હૈ, કઈ મિટ જાતે હૈ, એસે હી બ્રહ્માજી કે ચાલુ સ્વપ્ન મેં ભી તો હમ કઈ રવાના હો જાતે હૈ. દેખત નયન ચલો જગ જાઈ કા માંગું કછુ સ્થિર ન રહાઈ. દેખતે દેખતે આંખો કે દેખતે દેખતે જગત પસાર હો રહા હૈ. કહ રહા હૈ આસમા યે સમા ભી કુછ નહીં, રો રહી હૈ શબનમે યે નિઝારે કુછ નહીં. જિનકે મહેલો મેં હજારો રંગ કે જલતે થે ફાનુશ, ઝાડ ઉનકી કબ્ર પે હૈ ઓર નિશાન કુછ ભી નહીં. જિનકી નૌબતો સે ગુંજતે થે આસમા, વે ખુદ બેદમ હુએ અબ હું નહા કુછ ભી નહીં. કહ રહા હૈ આસમા યે સમા ભી કુછ નહીં. રાજાધિરાજ અંદાતા મહારાજ ફૂલો કે બરસાત હો જાતી થી મહારાજ, सड़कें बंद हो जाती थी, ए नगारे और तुरियां के गगन गुंजा देती थी। अभी देखो तो सब सपना हो गया कि फलाना वाइसरा आया है, फलाना साहब आया है, फलानी लेडी आई है, पुलिस बंदोबस्त हो रहा हो। अब देखो कहां गया सब, सीधी सादी एक अजवात हमारे जो ये महा गुजरात दे धमाधम चालू। ए वक्त हाचू लागत इकड़म तिकड़म काय कराचा हमची मुंबई हमला पाईजे। अभी देखो तो सपना हो गया। चाऊ माऊ सावधान जाग उठा है हिंदुस्तान हो। अभी देखो तो बात सपना हो गई। अनामत विरोधी आंदोलन जिंदाबाद। अभी देखो तो मुर्दा हो गया, सपना हो गया। ऐसे ही समय की सरिता में सारी हम लोगों की स्वप्न तुल्य चेष्टाएं सरकती जा रही है। सरकती हुई चेष्टाओं को शाश्वत संभालने का जो आग्रह है, वही आग्रह भय राग और क्रोध को जन्म देता है। जय श्री कृष्ण। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन। जो लाभ हुआ सो हो गया, जो घाटा हो गया सो हो गया, जो मान मिल गया तो मिल गया, अपमान हो गया तो हो गया, कांटा घुस गया तो अब निकाल के निश्चिंत हो। कांटा किसने रखा और क्यों घुसा उसकी चिंता में मत लग। और निकाल के फेंक दिया तो फेंक दिया, फिर कांटा लगा था मैंने निकाला था फेंक दिया, उधर चिंतन मत कर तू। ऐसे ही व्यवहार में कई कांटे आएंगे लगेंगे, कई बार निकलेंगे, लेकिन तू समझता जा समय की सरिता में सब बहा जा रहा है। इस प्रकार का जब तू विवेक दृढ़ रखेगा, ज्ञानमय तप के दरवाजे पर पहुंचेगा, तो तू श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर लेगा। जहां श्री कृष्ण मस्त है वहीं तू पहुंच जाएगा। वहीं उसका मतलब नहीं कि वैकुंठ, वहीं उसका मतलब नहीं कि डाकुर जी। श्री कृष्ण मस्त है अपने आप में, अपने आप में मस्त है, इसलिए उनको देखकर सब लोग मस्त होते हैं। जो अपने आप में नहीं है उसको दूसरे देख के मस्त कैसे हो सकते हैं। जो खुद खुद के घर नहीं तो वो दूसरों को खुद के घर क्या पहुंचाएगा। महाराज वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता। सर्वथा क्रोध जिसका नष्ट हो गया है और जो मेरे ही परायण तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं। मेरे परायण माना कितना भी धन सत्ता वस्तुएं हैं, वो समझता है साधक कि ये सब पहले नहीं थी। जन्म के पहले ये वस्तुओं की मालकियत मेरी नहीं थी और अभी भी ये मालकियत नहीं के तरफ जा रही है। इस प्रकार का उसका विवेक इन वस्तुओं का उपयोग करता है लेकिन इन वस्तुओं में आश्रय नहीं करता, वस्तुओं में शाश्वतता का मोहर नहीं लगाता। लेकिन जन्म के पहले मैं था, जन्म के बाद भी मैं रहूंगा, जन्म के पहले ये शरीर नहीं था तो ये शरीर की वस्तुएं और संबंध कैसे। मरने के बाद ये शरीर नहीं रहेगा तो इसके संबंध कहां। लेकिन जन्म के पहले और मरने के बाद जो मेरा चिदघन चैतन्य कृष्ण तत्व आत्मा था, उसकी जो शरण लेता है, उसको मैं मानकर उसमें जो आराम करता है, तृप्ति पाता है, उसमें प्रतिष्ठित होकर फिर यथा योग्य व्यवहार करता है, वो भगवान के आश्रित है। अच्छा, तो इन वस्तुओं में से इनको सबको छोड़ देवे ना, तो इन सबको पकड़े ना। न छोड़ना है न पकड़ना है, इनका उपयोग करना है। और हकीकत में उपयोग किए बिना कोई रहेगा नहीं। उपयोग तो करते हैं लेकिन आसक्ति बुद्धि से करते हैं, आस्था बुद्धि से करते हैं, शाश्वत बुद्धि से करते हैं। तुम घर में रहो मना नहीं, लेकिन घर में जो आसक्ति है, तिजोरी में रुपए लेकिन रुपयों में जो आसक्ति, आसक्ति भय देती। नहीं तो थोड़े रुपए चले गए, भय काहे का, आ गए तो आ गए, लाए कुछ नहीं थे। मैंने सुनाई थी एक कहानी कि एक कोई जीवन मुक्त महापुरुष के कुटिया पर डाकुओं ने डाका डाला। उन्होंने तो महाराज, उनका जो आगेवान था डाकुओं का, महाराज हजारों लोग तुम्हारे पास आते जाते हैं, आज हमारा वारा है दक्षिणा लेने का, कल ही गुरु पूनम बीता है, महाराज जो कुछ है माल दे दो। बोले मैं क्या माल उठा के दूं, ये देख ये मेरे ऊपर की चदरिया और नीचे की चदरिया दोनों उतार देता हूं, ये कोपिन पहन के मैं बाहर जाता हूं, जो कुछ चाहिए तुम्हारा अपना समझ के गठरिया बांधो। अब बाबा जी तो अंदर से जीवन मुक्त थे, विरक्त थे, वो माल ठाल तो समितियां संभालती थी, बाबा के पास तो कोई धर्म दमड़ी नहीं फूटी, बाकी जो कुछ था सर सामान शरीर की जरूरत कपड़े लत्ते बिछाना बिछाना ये कुछ, बाबा जी तो टिल्ले पे जाकर नाचने लगे कि हजी नफा मा तक दिनाधीन, अभी नफे में तक दिनाधीन। उन्होंने जो कुछ सर सामान बांधना था अपनी रुचि के अनुसार देखा वेखा बांधे एक दो फुटली। सरदार देखता है कि बाबा जी कहां चले गए, कहीं पुलिस में तो नहीं गए, देखा कि वो टिल्ले पर नाच रहा है कि तक दिनाधीन हजी नफा मा तक दिनाधीन हजी नफा मा अभी नफे में। वो डकैतों का सरदार गया कि बाबा जी क्या बात है, अभी नफे में तो क्या यहाँ टिल्ले के नीचे धन गाड़ा है? बोले ये भी खोद लो। नहीं बाबा जी आप बताओ नफे में कैसे? बोले आए थे तो कोपिन नहीं थी, लंगोटी नहीं थी, और इतना तुम क्रूर डाका डालने का तैयारी करके आए फिर भी लंगोटी तो नफे में रह गई यार, और खाया पिया वो भी नफे में रह गया, खाया पिया वो भी नफे में रह गया, अनुभव किया वो भी नफे में रह गया, और कोपिन तो तुम भी नहीं छीनोगे। बाबा जी का निर्दोष प्रेम कटाक्ष पड़ते ही वो सरदार का चित्त बदल गया, तो फिर अनुचर गठरिया खोल के वहां रख दिए, माफी मांगा। अरे माफी क्या, हम नाराजी नहीं है, जो अपने आप ऊपर ठीक से राजी है उस पर डकैत भी राजी हो जाते हैं, और जो अपने आप में राजी नहीं है ना उसकी मैम साहब भी नाराज हो जाती है, और मिस्टर भी नाराज हो जाता है, मिसिस भी नाराज। नारायण 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 नारायण, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो मैं खुद पे मस्ताना हो गया। वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद मद भावन भा मद भावम आगत। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं, तो आप समझ गए होंगे राग भय क्रोध क्यों होता है। नश्वर वस्तुओं में आसक्ति से राग भय और क्रोध होता है, ये वस्तु ये पद ये अमुक मेरा बना रहे। फूलों की माला आई अथवा फूल आया चढ़ा लिया, किसी ने उस स्वीकार कर लिया उसको प्रसन्नता हुई, सूंघ लिया नासिका को प्रसन्नता हुई, रख दिया तुमको मजा आ गया। अब ये फूल रोज आता रहे ऐसा ही बना रहे और मिलता ही रहे, ये मुसीबत पैदा हो गई। जय जय, आ गया तो आ गया, मिल गया तो मिल गया, हो गया तो हो गया, नहीं आया तो नहीं आया, वो ठीक से भोगता है। आदर्श भोगता का लक्षण क्या है? मूड भोगता भोगों की चिंता, भोगों को संभालना, भोगों को पाना और भोगों के लिए पच पच के मर जाना, ये मूड भोगता के लक्षण है। आदर्श भोगता अपने आप में तृप्त रहता है, भोग खींचकर आते हैं, मेहरबानी करता है, मेहर पड़ती है, मौज आती है तो भोग का उपयोग कर लेता है, नहीं तो बेपरवाह होकर रहता है, उसी का नाम आदर्श भोगता। आदर्श भोक्ता माना भोग उसके पीछे मंडारते हैं, और मूड भोक्ता भोगों के पीछे भागता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण खाते पीते नहीं थे, अरे तुम्हारे से बहुत बढ़िया खाए पिए जिए। जनक नहीं खाते थे पीते थे रहते थे, तुम्हारे से बढ़िया जिए होंगे। कबीर जी नहीं खाए पिए, अरे बहुत बढ़िया जिए होंगे। लेकिन वे आदर्श भोक्ता रहे, उनको पता था कि भोगों के लिए हम नहीं, भोग हमारे लिए है। संसार की नश्वरता के लिए मैं अपना आत्मघात नहीं करूंगा। को पीठ देकर छाया पकड़ने जाते हो तो छाया कितनी जल्दी तुम्हारे हाथ आती है पता है, जरा ट्राई करके देखना। और छाया को पीठ देकर सूरज के तरफ भागते हो तो छाया तुम्हारे पीछे कैसा आती, जो सूरज के तरफ भागता है तो छाया उसकी अनुगामी नहीं हो जाती है, लेकिन जो छाया के तरफ भागता है छाया उससे दूर भागती जाती है। ऐसे ही जो अपने आंतरिक सुख का त्याग करके बाहर के छाया जैसी परिस्थितियों को थामना चाहता है और उनको पकड़ रखना चाहता है, उस बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है।